व्यक्तिवाद का समर्थन। व्यक्तिवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सर्वोत्तम दर्शन है। व्यक्तिवादी विचारकों ने इस विचारधारा का समर्थन अनेक दृष्टिकोणों से किया है, जिनमें निम्नलिखित मुख्य है। पहला, नैतिक तर्क। इस तर्क का प्रतिपादन करने वालों में मिल का नाम उल्लेखनीय है। इस तर्क के अनुसार मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य अपने चरित्र तथा शक्तियों का उच्चतम और संतुलित विकास करना है, और इसके लिए आत्मविश्वास, आरंभ और साहस की आवश्यकता होती है, जिन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। आत्मनिर्भरता और आरंभक के इन गुणों के विकास के लिए राज्य को मानव जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करना अपेक्षित है। नैतिक विकास व्यक्ति के जीवन का आंतरिक पहलू है और व्यक्ति के जीवन की विभिन्न आंतरिक प्रेरणाओं का विकास तभी संभव है जब राज्य उसे निर्बाध स्वतंत्रता और प्रतियोगिता का अधिकार प्रदान करे। मिल के शब्दों में, अपनी इच्छानुसार कार्य करने में मनुष्य का चरित्र समुचित विकास होता है और मानवता की प्रगति होती है। राज्य द्वारा किया गया कार्य व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को समाप्त कर देता है, उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाता है और चरित्र को कुंठित करता है। दूसरा, आर्थिक तर्क। आर्थिक तर्क का प्रतिपादन प्रमुख रूप से क्विंसनी, एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो और फर्ग्यूसन आदि अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया है। यह कहा गया है कि स्वतंत्र प्रतियोगिता और निजी साहस उत्पादन में वृद्धि करते हैं, कार्यकुशलता बढ़ाते हैं और अधिकतम आर्थिक कल्याण करते हैं। अतः आर्थिक क्षेत्र में राज्य को अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करना चाहिए। अनियंत्रित प्रतियोगिता उत्पादकों को कम से कम मूल्य पर वस्तुओं का उत्पादन करके योग्य उपभोक्ता को कम भाव पर वस्तुएं खरीदने योग्य और श्रमिकों को अधिकतम प्राश्रमिक कमाने योग्य बनाती है। एडम स्मिथ आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति का महानतक समर्थक था। उसका विचार था कि यदि व्यापार और उद्योग को निजी हाथों में छोड़ा जाए तो इससे अधिकतम विकास हो सकता है। स्वतंत्र प्रतियोगिता में मूल्य अपने आप सर्वोत्तम रीति से निर्धारित हो जाते हैं। अतः वेतन, किराया, ब्याज और कीमतों को अनियंत्रित रहना देना चाहिए, जिससे वे परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल सकें। विदेशी व्यापार पर भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए और राज्य का आर्थिक क्षेत्र में केवल इतना कार्य होना चाहिए कि वह छल और विश्वासघात से लोगों की रक्षा करे। तीसरा, प्राणी वैज्ञानिक तर्क। इस तर्क के प्रमुख व्यक्ता हर्बर्ट स्पेंसर हैं। स्पेंसर के अनुसार प्रकृति के अंतर्गत अनवरत रूप से जीवन संघर्ष और योगितम की विजय प्रक्रिया जारी है, और यह प्रक्रिया ऊपर से देखने पर निर्दयी प्रतीत होने पर भी संपूर्ण मानव सृष्टि के हित में है। योगितम की विजय के सिद्धांत को मानव समाज पर लागू करते हुए वे कहते हैं कि विकास और प्रगति का स्वाभाविक मार्ग यह है कि दीन, दुर्बल, अयोग्य एवं अशक्त व्यक्तियों के जीवन का अंत हो जाए, ताकि उनके जीवन पर किए जाने वाले साधनों का उपयोग समर्थ और योग्य व्यक्तियों द्वारा किया जाए, जिससे संपूर्ण मानव जाति को लाभ पहुंचे। स्पेंसर के शब्दों में, यद्यपि ऊपर से देखने पर यह अत्यंत अन्यायपूर्ण प्रतीत होता है कि विधवाओं और अनाथों को जीवन और मृत्यु से संघर्ष करने के लिए अकेला छोड़ दिया जाए, परंतु संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का विचार रखते हुए यह अत्यंत लाभप्रद है। यदि
हमें एक योग्य सुदृढ़ और सशक्त संतति का विकास करना है तो हमें मनुष्यों को उनके ही हाल पर छोड़ देना चाहिए ताकि शक्तिशाली व्यक्तियों की उन्नति और अयोग्य व्यक्तियों की समाप्ति हो सके। समनर भी प्राणी वैज्ञानिक का तर्क समर्थक है और उसका कथन है कि हमारे सामने दो विकल्प हैं, प्रथम स्वतंत्रता, असमानता और योग्यतम का जीवित रहना और दूसरा अस्वतंत्रता, समता और अयोग्य व्यक्तियों का जीवित रहना या मर जाना। प्रथम विकल्प से समाज आगे बढ़ता है और यह सभी श्रेष्ठ सदस्यों के पक्ष में है। दूसरा विकल्प समाज को गिराता है और सबसे बूढ़े व्यक्तियों के पक्ष में है। चौथा, राज्य की अयोग्यता का तर्क। व्यक्तिवादियों का तर्क है कि राज्य आर्थिक, सामाजिक आदि कार्यों को करने की ना तो योग्यता रखता है और ना ही सामर्थ्य। राज्य कार्यों की सफलता राज्य कर्मचारियों पर निर्भर करती है और इन कर्मचारियों का राजकीय कार्यों में कोई निजी स्वार्थ ना होने के कारण वे उनकी सफलता में कोई विशेष रुचि नहीं लेते। एक और सरकारी उद्योग व्यवसायों का प्रबंध निजी उद्योगों के प्रबंध की अपेक्षा महंगा पड़ता है। दूसरी ओर सरकारी दायित्व भी निश्चित नहीं होता क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य किसी कार्य नहीं होता और नौकरशाही की सभी बुराइयां आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं। इस संबंध में जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है, राज्य को प्रत्येक अतिरिक्त कार्य सौंपने का अर्थ अतिशय भार से लदी हुई संस्था पर नया बोझ डालना है। इसका परिणाम यह होता है कि बहुत से कार्य अनुचित ढंग से किए जाते हैं और बहुत से कार्य इसलिए नहीं हो पाते कि सरकार देर किए बिना उन्हें कर ही नहीं दे सकती। पांचवा, मनोवैज्ञानिक तर्क। मनोवैज्ञानिक आधार पर यह कहा जा सकता है कि संपत्ति का स्वामी होना मानव स्वभाव के एक आधारभूत प्रवृत्ति है और इसके आधार पर व्यक्ति अधिक से अधिक उत्पादन करने और लाभ पाने का प्रयत्न करते हैं। वास्तव में मनुष्यों में प्रतिस्पर्धा समता के लिए नहीं अपितु एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए होती है और आधुनिक सभ्यता का विकास इस प्रतिस्पर्धा के आधार पर हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि सरकार अपनी नीति पर असमान क्षमता और परिश्रम वाले व्यक्तियों में धन का समान वितरण कर देगी तो मनुष्यों में अधिक उत्पादन और लाभ की प्रेरक शक्ति समाप्त हो जाएगी, जिससे समुदाय को आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में स्वाभाविक नेताओं से वंचित रहना पड़ेगा। परिश्रमी, मितव्ययी, सूझवान और आविष्कारक मनुष्य व्यक्तिवादी समाज का ही परिणाम हो सकते हैं। छठा, अनुभव का तर्क। इतिहास मानव अनुभवों की खान है और इतिहास इस बात का साक्षी है कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप सदैव ही मूर्खतापूर्ण रहा है। जब कभी राज्य ने वस्तुओं के मूल्य, मजदूरी की दर और आयात निर्यात पर रोक की चेष्टा की है, वह पूर्णतः असफल रहा है। नेपोलियन के पतन का मुख्य कारण फ्रांस एवं अन्य यूरोपीय देशों में ब्रिटिश माल के बहिष्कार के पतन का प्रयत्न था। भारत के अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक की आर्थिक नीति भी असफल रही। अन्य भी अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। बकल के अनुसार राज्य के अधिकारी इस प्राचीन सिद्धांत का आश्रय लेकर कि उनकी सहायता बिना व्यापार तथा उद्योग धंधे की उन्नति नहीं हो सकती, बराबरी वाली गलती करते हैं। वे समाज पर जुर्म लादते रहते हैं और व्यर्थ के प्रतिबंधों द्वारा व्यापार की अवनति करते हैं। इन अंकुशों के रहते हुए सभ्यता का विकास कैसे हो सकता था? इस प्रकार व्यक्तिवादी कहते हैं कि अनुभव के आधार पर भी राज्य को व्यक्तिगत जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यक्तिवादी की आलोचना। व्यक्तिवादी के समर्थन में उपरोक्त तर्क दिए गए हैं। आलोचकों द्वारा उनकी कटु आलोचना की गई है। ये आलोचक उपरोक्त सभी तर्कों को असत्य और एकांगी मानते हैं और निम्नलिखित आधारों पर व्यक्तिवाद का खंडन करते हैं। राज्य एक बुराई नहीं है। व्यक्तिवादियों की धारणा गलत है कि राज्य एक बुराई है। राज्य एक बुराई ना होकर एक निश्चित सकारात्मक अच्छाई है। राज्य का विकास शक्ति तथा पापों के कारण नहीं, वरन मानव समाज और स्वभाव की जीवन की मूल्य आवश्यकताओं के कारण हुआ है। आधुनिक राज्य तो सभ्य जीवन की प्रथम आवश्यकता है और सामाजिक कल्याण तथा सामूहिक हित के विविध कार्य करती है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, सड़कों और रेलों का निर्माण तथा पानी और बिजली का प्रबंध करने वाली संस्था को किसी भी विवेकशील प्राणी द्वारा दुर्गुण नहीं किया जा सकता। सत्य तो यह है कि मानव जीवन और सभ्यता ने जो भी प्रगति की है उसका बहुत हद तक श्रेय राज्य को ही है। यदि राज्य एक बुराई होता तो वह कभी का समाप्त हो गया होता। इसके विपरीत राज्य के संबंध में तो अरस्तु का यह कथन ही सत्य है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और सजीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। इस प्रकार तर्क कहता है कि राज्य संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है और राज्य कला में साझेदारी है और सार गुण और सारी पूर्णता में साझेदारी है। राज्य को एक बुराई मानने वालों को गार्नर का उत्तर देते हैं कि इतिहास में यह बात निभ्रांत द्वारा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्देशित कार्यों के आधार पर हुई है। यह सत्य है कि कभी कभी राज्य के उद्देश्यों का सार्वजनिक हित के विरुद्ध उपयोग किया गया, परंतु इससे उसे दूषण बतलाकर उसकी निंदा करना वैसा ही मूर्खतापूर्ण कार्य है जितना रेलपथ की निंदा करना, क्योंकि इनके कारण कभी कभी दुर्घटना हो जाती है। दूसरा, राज्य कार्य और मानव स्वतंत्रता के परस्पर विरोधी नहीं है। व्यक्तिवादियों का स्वतंत्रता संबंधी नकारात्मक दृष्टिकोण नितांत भ्रमपूर्ण है। नियंत्रण के अभाव में स्थिति को स्वतंत्रता नहीं वरन स्वच्छंदता भी कहा जा सकता है। व्यवहारिक जीवन में स्वतंत्रता सीमित रूप में ही संभव हो सकती है और जैसा कि लास्की का मत है, स्वतंत्रता की उत्पत्ति तथा उसकी सुरक्षा की समस्या अधिकतर उसे नियंत्रित करने की ही समस्या है। वस्तुतः सभी नियंत्रण दुर्गुण नहीं होते और स्वतंत्रता का उपभोग योग्य बनाने के लिए नितांत आवश्यक भी है। राजकीय हस्तक्षेप को ही स्वयं रोगी के हित में कड़वी दवा की संज्ञा दी जा सकती है। विद्वान लेखक रिचि ने व्यक्तिवादियों की इन रुटि के संबंध में ठीक ही कहा है कि व्यक्तिवादी स्वतंत्रता तथा राजकीय हस्तक्षेप को एक रोकर वही के तेना पावना को दो विरोधी पक्ष मान बैठे हैं, जिसके कारण एक पक्ष की वृद्धि उन्हें आवश्यक रूप से दूसरे पक्ष की कमी का अनुभव कराती है। वास्तव में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण रूटिपूर्ण है। राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते वरन उसकी रक्षा करते और उसमें वृद्धि करते हैं। तीसरा, मानवीय कार्यों का आत्मविश्वास और परिविषयक में विभाजन अव्यवहारिक और अनुचित है। मिल द्वारा मानवीय कार्यों को आत्मविषयक और परिविषयक नामक दो वर्गों में बांटना नितांत भ्रांतिपूर्ण है। वस्तुतः एक व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है और व्यक्ति का कोई भी कार्य ऐसा नहीं जिसका समाज पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से प्रभाव ना पड़ता हो। प्रोफेसर रिचि लिखते हैं कि व्यक्ति के विचार की पूर्णता आत्मविषयक नहीं होते, इसलिए मिल का विभाजन नितांत अस्वीकार्य है। इस प्रकार
बार्कन ने मिल की आलोचना करते हुए कहा है कि व्यक्ति और समाज के विरोध की कल्पना करने के कारण उसकी स्वतंत्रता का विचार सही नहीं है। चौथा, समाज संबंधी दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है। व्यक्तिवाद का एक बहुत बड़ा दोष समाज के संबंध में उसकी धारणा है। व्यक्तिवादी समाज को ऐसे व्यक्तियों का समूह मात्र मानते हैं जो प्रकृति से स्वतंत्र, स्वयं में परिपूर्ण और सभी गुणों, शक्तियों तथा अधिकारों से संपन्न होते हैं, किंतु समाजशास्त्र, इतिहास और अनुभव के आधार पर इस धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना उसका अस्तित्व भी संभव नहीं है। मनुष्य को अपने शारीरिक अंगों के प्रयोग का सही तरीका, चिंतन शक्ति, भाषा विचार और भावनाएं सब कुछ समाज से ही प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में समाज को कृत्रिम कैसे कहा जा सकता है? सामाजिक कल्याण से पृथक रूप में व्यक्तित्व कल्याण के प्रश्न पर विचार कैसे किया जा सकता है? व्यक्तिवादियों का विचार भी भ्रामात्मक है कि व्यक्तियों के हितों का योग ही समाज का हित है। वास्तव में समाज व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं है। जिस प्रकार ईंटों के ढेर को हम मकान नहीं कह सकते, उसी प्रकार व्यक्तियों के समूह मात्र को हम समाज नहीं कह सकते। व्यक्ति और समाज के संबंध में गलत धारणा के कारण व्यक्तिवादी विचारधारा त्रुटिपूर्ण हो गई है। पांचवा, मनुष्य सदैव अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक नहीं होता। व्यक्तिवाद की आधारभूत मान्यता है कि व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक होता है। कुछ सीमा तक तो ठीक हो सकती है, किंतु प्रत्येक स्थिति में इसे सत्य नहीं माना जा सकता। आज सामाजिक संगठन इतना जटिल और मानव जीवन के सम्मुख ऐसी विषम समस्याएं हैं कि संपूर्ण समाज के सामूहिक ज्ञान और अनुभव के आधार पर ही मानव जीवन को सुखी और संपन्न बनाने का प्रयत्न किया जा सकता है, और इस संबंध में राजकीय हस्तक्षेप एक वरदान ही होता है। इस संबंध में डॉक्टर गार्नर ने कहा है कि व्यक्ति न केवल आर्थिक उपभोक्ता के रूप में अपने हितों का स्वयं योग्य निर्णायक नहीं हो सकता, पर अपने व्यक्तिगत व्यवहार के मामलों में भी, विशेषकर स्वास्थ्य, सुरक्षा और नैतिक कल्याण के मामलों में भी उसका विश्वास नहीं किया जा सकता। सत्य तो यह है कि व्यक्ति की बौद्धिक, नैतिक तथा भौतिक आवश्यकताओं का उसकी अपेक्षा समाज ही श्रेष्ठ निर्णायक हो सकता है। सिजविक, लेविलियल और जेवेंस आदि के द्वारा भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए गए हैं। वास्तव में मन स्वार्थी होने के साथ भावुक भी होता है और अनेक बार वह स्वयं अपने और दूसरों के हितों को भूलकर आत्महत्या जैसे घृणित कार्य कर बैठता है। छेवा, समाज संबंधी दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है। व्यक्तिवादियों द्वारा व्यक्ति के गौरव का प्रतिष्ठित करके हुए समाज को नितांत उपेक्षा कर दी गई है। समाज को व्यक्तियों का समूह मात्र मानना उनकी भूल है, क्योंकि समाज का अपना एक लक्ष्य है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व और लक्ष्य से अधिक व्यापक और विस्तृत है। व्यक्तिवादियों द्वारा समाज से पृथक रूप में जिस स्वकेंद्रित और सर्वपर्याप्त व्यक्ति की कल्पना की गई है, वह नितांत भ्रमपूर्ण है। यह समझना नितांत कठिन है कि समाज से पृथक रहकर व्यक्ति किस प्रकार अपना विकास कर सकता है और जीवित रह सकता है। सामान्य व्यक्ति रामबिन्स क्रूसो नहीं हो सकता। प्राणी वैज्ञानिक तर्क असंगत और अमानवीय है। व्यक्तिवादियों द्वारा प्राणी वैज्ञानिक तर्क भी सत्यता, असंगतता और मानवता से परे है। सर्वप्रथम तो योग्यतम एक ही सापेक्षिक शब्द है। आज जो वस्तु योग्य और उपयुक्त है, वह कल सर्वथा अयोग्य और अनुपयुक्त हो सकता है। यह भी जरूरी नहीं कि योग्यतम व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ भी हो। इस संबंध में लीकॉक ने ठीक ही कहा है कि यदि योग्यतम की प्रमुख परीक्षा अतिजीविता के तथ्य में निहित है, तब तो सेंध लगाकर चोरी करने वाला समृद्ध व्यक्ति प्रशंसा का पात्र बन जाता है और भूख से मरने वाला
शिल्पकार घृणा का। इसके अतिरिक्त इस तर्क का प्रतिपादन करते हुए स्पेंसर ने पशु जगत और मानव जगत के आधार भेद भूत को भुलाकर मानव को पशु जगत के नियमों से शासित करने का प्रयत्न किया है। वस्तुतः मानव समाज में पारस्परिक सहायता और सहानुभूति के नैतिक सिद्धांत को अपनाकर अस्तित्व के निर्दयता संघर्ष को बंद कर दिया गया है। हक्सले के शब्दों में राज्य एक मानवीय संस्था है और उसके संबंध में पशु जगत के नियमों को शासित नहीं किया जा सकता। हमारा उद्देश्य योग्यतम व्यक्तियों को जीवित रखने की अपेक्षा अधिकाधिक जीवित व्यक्तियों को जिंदा रहने योग्य बनाना चाहिए। आठवां, राज्य की अयोग्यता का तर्क असत्य है। व्यक्तिवादियों की इस बात को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। राज्य भूतकाल में सदैव ही असफल रहा। व्यक्तिवादियों का इतिहास अध्ययन नितांत एकांगी है। वास्तव में यदि राज्य कुछ कार्यों को करने में असफल रहा तो दूसरी ओर इसने मानवता की अनेक महत्वपूर्ण सेवाएं भी की। व्यक्तिवादी यह भूल जाते हैं कि राज्य की असफलताओं का अंतिम उत्तरदायित्व व्यक्तियों पर ही तो है और रूटियां सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं वरना निजी क्षेत्र में भी हो सकती हैं। हक्सले ने ठीक ही कहा है कि राज्य एक शीशे के मकान में रहता है और इसलिए हम उसके समस्त प्रयासों एवं पूर्ण तथा अपूर्ण असफलताओं को भली भांति देख लेते हैं, किंतु व्यक्तित्व उद्योग अपारदर्शी ईंटों के मकान में रहता है जिसके कारण जनसाधारण कभी कभी ही उसके कार्यों का ज्ञान कर पाता है। लॉर्ड पम्बरो का कथन है कि यदि किसी क्षेत्र की असफलताओं को इसी प्रकार संकलन किया जाए तो वे किस प्रकार के दिखाई देंगे। नौवां, व्यक्तिवाद केवल उत्पादन का सिद्धांत है। व्यक्तिवादी विचारकों ने केवल उत्पादन संबंधी समस्याओं पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया है और विवरण संबंधी समस्याएं जो मानव कल्याण की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है उनका ध्यान आकर्षित नहीं कर सकी है। यही कारण था कि यद्भायम नीति को अपनाने के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में उत्पादन तो बढ़ा लेकिन साथ ही धनी अधिक और निर्धन अधिक निर्धन होने लगे। जब तक अधिक उत्पादन के साथ साथ उचित वितरण की व्यवस्था न हो उस समय तक अति उत्पादन बिल्कुल व्यर्थ है। केवल उत्पादन का नितांत संबंध सिद्धांत होने के कारण व्यक्तिवाद वर्तमान समय के लिए अव्यवहारिक है। व्यक्तिवाद की आर्थिक मान्यताएं दोषपूर्ण हैं और उनके आधार पर एक स्वस्थ और समाज की स्थापना संभव नहीं। व्यक्तिवादियों का तर्क है कि व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में राज्य के द्वारा यद्भायम की नीति का अनुसरण करना चाहिए और अपने नागरिकों को अनुबंध की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। समान व्यक्तियों के बीच तो अनुबंध की स्वतंत्रता को न्यायपूर्ण माना जा सकता है, लेकिन पूंजीपति और मजदूर जिनकी शक्ति में बहुत अधिक अंतर होता है के बीच अनुबंध की स्वतंत्रता की बात वैसे ही है जैसे कि एक लंगड़े और कार में चलने वाले व्यक्ति के बीच करते रहेंगे। यद्भावम नीति के परिणाम स्वरूप थोड़े से पूंजीपति मजदूर वर्ग का शोषण करते रहेंगे और उनके द्वारा समस्त मानव जाति पर अधिकार कर लिया जाएगा। CIM जोड का कहना है कि यद्भावम नीति से जिस प्रकार की आर्थिक क्रिया को प्रोत्साहित करती है उसे अंधी क्रिया ही कहा जा सकता है। 11वां, व्यक्तिवादी अर्थव्यवस्था का वर्तमान युग में अव्यवहारिक है। व्यक्तिवादी सिद्धांत 21वीं सदी में चाहे कुछ लाभदायक सिद्ध हुआ हो परंतु वर्तमान समय में जबकि वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा उत्पादन और वितरण के साधनों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुका है यह सर्वथा अव्यवहारिक है और व्यक्ति को आर्थिक दौर में अपने पैरों की शक्ति पर छोड़ दिया जाए इस सिद्धांत को अपनाने परिणाम स्वरूप कुछ गुने चुने पूंजीपति संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर अधिकार कर लेंगे और श्रमिक वर्ग भुखमरी की सीमा को प्राप्त हो जाएगा। 12वां, स्वतंत्र व्यवसायिक प्रतियोगिता का परिणाम साम्राज्यवाद। व्यक्तिवाद की आलोचना इस आधार पर की जा सकती है कि उसके द्वारा प्रतिपादित व्यवसायिक प्रतियोगिता से एकाधिकार भावनाएं उत्पन्न होती हैं और उत्पादन एवं भोग में संतुलन नहीं स्थापित हो पाता। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त उत्पादन के लिए बाजार प्राप्त करने हेतु देश के बाहर नए नए व्यवहारिक केंद्रों की खोज की जाती है, जिसका परिणाम साम्राज्यवाद होता है। भारत यदि देशों का ब्रिटिश साम्राज्य, इंग्लैंड आदि देशों की व्यक्तिवादी विचारधारा और पूंजीवादी व्यवस्था का ही परिणाम था, लेनिन ने कहा भी है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। 13वां, ऐतिहासिक दृष्टि से व्यक्तिवाद के परिणाम भयंकर हुए हैं। 17वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप में इस सिद्धांत को अपनाने के परिणाम स्वरूप समृद्धि तो आई, लेकिन इसके साथ ही एक ऐसे दीनहीन और निर्धन श्रमिक वर्ग का उदय हुआ जो अमानवीय स्थिति में जीवन निर्वाह के लिए विवश था। ऐसी स्थिति में गोल्डस्मिथ यह भी उक्ति, संपत्ति के एकीकरण से जनता का पतन होता है, पूर्णता सत्य चरितार्थ हुई। आर्थिक स्वतंत्रता के उत्पन्न इन दुर्गुणों को दूर करने के लिए ही राज्य के आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया। व्यक्तिवादी दर्शन को अपनाने के इन कुपरिणामों ने ही व्यवहारिक राजनीतिक जगत में सदैव के दर्शन के लिए विदा कर दिया। निष्कर्ष, इस आलोचनाओं के बावजूद बहुत कुछ सीमा तक सत्य होते हुए भी हम इस बात से असहमति नहीं प्रकट कर सकते कि व्यक्तिवादी सिद्धांत में सत्य का अंश है तथा वह व्यक्ति की मूलभूत गरिमा और स्वतंत्रता पर बल देता है। व्यक्ति की आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए व्यक्तिवाद ने अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप का जो विरोध किया है वो नितांत उचित ही है, पर व्यक्तिवाद में सत्य का यह अंश होते हुए भी व्यक्तिवादी स्वीकार योग्य विचारधारा नहीं है, क्योंकि यह गलत धारणाओं पर आधारित है। लास्की के मतानुसार व्यक्तिवाद का अर्थ होगा निर्बल स्वास्थ्य, अविकसित वृद्धि, अभागे घर और ऐसे कार्य जिनमें बहुसंख्यक प्राणी मानवीय रुचि का कोई स्रोत नहीं खोज सकते। इस प्रकार गिल्सकाइट्स ने कहा है कि व्यक्तिवाद राजकीय नियंत्रण की बुराइयों की अतिशयोक्ति करता है, जब वह भूल जाता है कि बुरे की अपेक्षा राज्य के अच्छे कार्यों के अधिक उदाहरण मिलते हैं। यह मौलिक रूप से व्यक्तित्व की असत्य धारणा को प्रकट करता है। अंत में यह आधुनिक जीवन की जटिलता के पूर्णता अनुचित सिद्ध हुआ। आज विश्व की सभी सरकारें व्यक्तिवाद को छोड़कर समाजवाद और जनकल्याण की विचारधारा ग्रहण करती जा रही है, जो स्वतः ही इस बात का प्रमाण है कि व्यक्तिवाद का एक मूत सिद्धांत है।